प्राप्त हो जाएगी, दानव तन में प्राप्त हो जाएगी। तो भाई जब वर्तमान में हमको परम शांति चाहिए तो परम शांति का विशेष है योग।
आज उसे नहीं कहते जिसकी प्राप्ति न हो,
और
किसी के लिए इसकी प्राप्ति हो जाए, लेकिन साध्य की प्राप्ति के लिए साधने की आवश्यकता होती है और साधना की अभिव्यक्ति प्राप्ति न हो, साध्य किसी के लिए इसकी प्राप्ति हो जाए, लेकिन साध्य की प्राप्ति के लिए साधना की आवश्यकता होती है और साधना की अभिव्यक्ति के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। अतः मानव को सत्संग करना चाहिए। जो काम सत्संग के द्वारा हो सकता है वो किसी और प्रकार के द्वारा हो ही नहीं सकता, कारण कि आप विचार करके देखें तो जीवन का जो सत्य है उसको अगर आप चिंता नहीं करेंगे तो साधना का उदय नहीं होगा, और जब तक साधना जीवन में उदय नहीं होती तब तक साधन और जीवन एक नहीं होता और साध्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हर भाई को हर बहन को चाहे किसी मजहब के हों, किसी धर्म के हों, किसी वर्ग के हों, किसी देश के हों, सत्संग करना चाहिए। सत्संग क्या है? जाने हुए अर्थ का त्याग, सुने हुए सत्य को स्वीकार करना। अब जाना ही असत क्या है? जितने भाई बहन बैठे हैं सत्य संकल्प है कि जो मिला है जिस किसी को शरीर रूप में, व्यक्ति रूप में, वस्तु रूप में, योग्यता रूप में, सामर्थ्य रूप में, वो सदैव रहेगा। जैसे हम और आप बैठे हुए हैं, वो बैठना क्या सदैव रहेगा? उसको कहेंगे नहीं रहेगा। तात्पर्य क्या निकला? मिला हुआ जो होता है, जो मिलता है वो अलग होता है, ऐसा ग्रहण है, और जो अलग होता है वो अपना नहीं होता, वो अपने लिए नहीं होता, उसकी सेवा की जा सकती है, उसका सदुपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसको अपना नहीं माना जा सकता, अपने लिए नहीं माना जा सकता। आचरण कैसे? थोड़ा गंभीरता से विचार किया जाए। जब मिला हुआ अलग होता ही है तो अपना मानने से लाभ क्या? मिले हुए को अपना मानने का परिणाम ही होता है कि वो मिला हुआ तो रहता नहीं, उसकी ममता रह जाती है, उसकी कामना रह जाती है। वस्तु चली गई और ममता बनी गई, व्यक्ति चला गया और ममता बनी गई, उससे कोई लाभ नहीं होगा, हानि बहुत बड़ी होती है। वस्तुओं की ममता से लोभ की उत्पत्ति हो जाती है, व्यक्तियों की ममता से कामना की उत्पत्ति हो जाती है, मोह की उत्पत्ति हो जाती है, तो अनेक विकारों की उत्पत्ति होती है। अपना मानने से कोई लाभ नहीं होता, इसलिए मिले हुए शरीर को, मिली हुई योग्यता को, मिली हुई सामर्थ्य को अपना नहीं मानना चाहिए, अपने लिए नहीं मानना चाहिए। अगर ये बात आपको जच जाए, रुचि जाए, पसंद आ जाए, हम जो हमें जो कुछ मिला है वो हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, तो आप बड़ी सुगमतापूर्वक, बड़ी सुगमतापूर्वक निर्विकारता को प्राप्त कर सकते हैं, यानी निर्मोहता को प्राप्त कर सकते हैं, निर्लोभता को प्राप्त कर सकते हैं, निष्कामता को प्राप्त कर सकते हैं, निर्भयता को प्राप्त कर सकते हैं, समता को प्राप्त कर सकते हैं, अनेक दिव्य गुण आपको प्राप्त हो सकते हैं। चारू कि जब आप इस सत्य को स्वीकार करें तो जो मिला हुआ है वो अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, उसके आप ये नहीं है, उसका सदुपयोग नहीं करना है या उसकी सेवा नहीं करना है, मिले हुए व्यक्तियों की सेवा करना है, मिली हुई वस्तु योग्यता आदि का सदुपयोग करना है, मिली हुई वस्तु योग्यता आदि का सदुपयोग तभी हो सकता है जब होने अपना न माने अपने लिए न माने। जब मनुष्य किसी वस्तु को अपना मान लेता है, अपने लिए मान लेता है, तो उसका सदुपयोग नहीं कर पाता, और जब मिली हुई वस्तु का योग्यता का सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं होता, जायज इस्तेमाल नहीं होता, तब जीवन में अकर्तव्य आ जाता है, कर्तव्य नहीं रहता। कर्तव्य का मतलब ही इतना है कि जिस किसी को जो कुछ मिला है उसका वो सदुपयोग करे, उसका वो जायज इस्तेमाल करे। तो मिले हुए के सदुपयोग करने से मिले हुए का सम्मान भी टूट जाता है और मनुष्य करने के राग से मुक्त भी हो जाता है। मिले हुए का संबंध टूटने से मौजूद से संबंध हो जाता है और करने का राग निवृत्त होने से विश्राम प्राप्त हो जाता है। मैं ये निवेदन कर रहा था कि भाषा आपकी समझ में आ रही है, कोई कठिनाई तो नहीं मालूम हो रही, सुनाई दे पाए थी कि मैं ये कह रहा था कि मिले हुए के सदुपयोग से उसका संबंध टूट जाता है और हम करने के राग से मुक्त हो जाते हैं। देखिए, करने से जो कुछ मिलता है वो अपने काम नहीं आता, वो शरीर के काम आता है, परिवार के काम आता है, समाज के काम आता है, अपने काम नहीं आता। आप देखिए, बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कार हुए, लेकिन क्या कि कोई ऐसा आविष्कार आज तक आपने सुना जो आपको स्वाधीन बना दे, जो आपको अमर बना दे? सुना है कभी? क्या रहा है? नहीं सुना। तो मिला हुआ चाहे आप क्षेत्र का उपजा हुआ अंग हो, चाहे फैक्ट्री की बनाई हुई वस्तु हो, वो शरीर के काम आती है, अपने काम नहीं आती। हम शरीर की जरूरत को अपनी जरूरत कहकर और अपने को पराधीन बना लेते हैं, लेकिन मिला हुआ सदैव तो रहता नहीं। इसलिए ये सीधी सी बात है, ये जीवन का सत्य है कि हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमें जो कुछ मिला है वो अपना नहीं है, किसका है? परिवार का है, समाज का है, संसार का है, अपना नहीं है। इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, मिली हुई वस्तु को, मिली हुई योग्यता को अगर आप परिवार के लिए माने, समाज के लिए माने, संसार के लिए माने, कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि वस्तुओं के द्वारा परिवार, समाज, संसार की सेवा की जा सकती है। तो सेवा सामग्री है जो मिला है, फिर अपने लिए क्या है? ये प्रश्न पैदा होता है जीवन में कि मिली हुई योग्यता भी अपने लिए नहीं, मिली हुई सामर्थ्य भी अपने लिए नहीं, मिली हुई वस्तु भी अपने लिए नहीं, तो फिर अपने लिए क्या है? तो अपने लिए जो है तो अपने ही में है, वो अपने ही में है। तो अब प्रश्न होता है कि अपने लिए है तो अपने ही में है, तो उसकी हमें प्राप्ति कैसे हो? उसकी प्राप्ति होगी तब जब आप अपने को अपने में संतुष्ट करेंगे तब। और अपने को अपने में संतुष्ट कैसे करेंगे? जब मिले हुए का सदुपयोग करेंगे तब। और मिले हुए का सदुपयोग कैसे करेंगे? जब उसे अपना न मानेंगे, अपने लिए न मानेंगे। देखिए, में जीवन का जो सत्य होता है वो किसी मजहब की बात नहीं होती, वो किसी इधर की बात नहीं होती, वो सभी की अपनी बात होती है। आप कहें कैसे, आप विचार करके देखिए, अगर आप मिले हुए तो आप अपना मान लें कि मान लें कि शरीर अपना है, तो क्या आपका हो जाएगा? कहना आपके साथ बना रहेगा क्या रहा है? क्या आप सदैव सभी के साथ बने रहेंगे? जी, लेकिन अपना मानने से मोह में आबद्ध हो जाएंगे कि नहीं क्या रहा है? तो मोह में आबद्ध हो जाए और शरीर हमसे छूट जाए तो कष्ट होगा कि आराम मिलेगा? ऐसे ही हम वस्तु के लोभ में आबद्ध हो जाए, वस्तु हमसे अलग हो जाए तो उसे कष्ट होगा कि आराम मिलेगा? अगर अपना न माने तो शरीर के सदुपयोग से क्या परिवार की सेवा नहीं हो सकती, समाज की सेवा नहीं हो सकती, इंसान की सेवा नहीं हो सकती? तो मिले हुए शरीर को हम अपना माने ये बात सच्ची बात होती है कि मिले हुए शरीर के द्वारा जिसकी चाहे उसकी सेवा करने ठीक बात होती है क्या रहा है? यानी आपको कौन सी बात सच्ची बात होती है, कौन सी बात आपको मालूम होती है ठीक है? आप अपने द्वारा सोचिए। देखिए, मानव शासन की प्रणाली में जो जीवन का सत्य है उसी को बताने का प्रयास किया है, उसी का संकेत किया है। तो जब आप ही जानते ही हैं कि मिले हुए शरीर के साथ हम सजग नहीं रह सकते, तो शरीर के रहते हुए भी क्या हम शरीर के संबंध से, शरीर की आवश्यकता से फ्री नहीं हो सकते क्या रहा है? आज भाई आए हमसे पूछ रहे, स्वामी जी हमको मुक्ति चाहिए तो कैसे मिलेगी? मैंने कहा मुक्ति तो तुमको तुम्हारे ही ज्ञान से मिलेगी। कि मैं आपसे बहुत निवेदन करना चाहता हूं, जो तुम्हारा अपना ज्ञान है उसी से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का मतलब क्या है? शरीर के रहते हुए हम शरीर की जरूरत से फ्री हो जाए, मुक्त हो गए। जो शरीर की जरूरत से फ्री हो जाएगा उसे किसी और की जरूरत अनुभव होगी क्या? क्या रहा है जी? नहीं होगी। कि मैं खाली इसलिए मैं बेपरा आदमी हूं ना, तो मैं इसलिए पूछ लेता हूं कि मेरी भाषा आपके कारण तक ठीक पहुंचती कि नहीं। यानी शरीर की जरूरत से फ्री होना ही मुक्त होना है, और कोई मुक्ति होगी हमको मालूम नहीं, लेकिन इस मुक्ति का अनुभव है जीवन में कि मनुष्य चाहे तो शरीर की जरूरत से अपने को फ्री कर सकता है और शरीर रह सकता है जब तक उसको रहना है, और शरीर की जरूरत से अपने को फ्री न करे तब करता रहे तो क्या वो शरीर को सदैव रख सकता है क्या रहा है? कभी नहीं रख सकता। अच्छा भाई, ये बात हमारे लिए है कि सभी के लिए है? अजी तो बताओ भाई, कोई पढ़ा लिखा रख लेगा क्या? तो बेपढ़ा नहीं रख पाएगा, बोलो। पैसे वाला सभी को रख लेगा? अच्छा, बड़ा बड़ा वैज्ञानिक रख लेगा? नहीं, कोई नहीं। ये यूनिवर्सल कानून है कि नहीं? ये आपके जीवन का सत्य है कि नहीं? आप विचार कीजिए, हम चाहे आप चाहे कोई चाहे, पढ़ा लिखा हो बेपढ़ा लिखा हो, धनी हो निर्धन हो, मजदूर हो मिलियनर हो, मामूली चपरासी हो प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, लेकिन ये जीवन का सत्य सबके लिए समान है कि इसमें कोई फर्क है? सबके लिए समान है तो सत्य कहते ही उसको है जो सबके लिए समान हो, उसी को सत्य कहते हैं। तो अब हमारे आपके सामने जो प्रश्न पैदा हुआ, तो ये प्रश्न पैदा हुआ कि हम जिस शरीर के साथ सदैव नहीं रह सकते, जिन वस्तुओं के साथ सदैव नहीं रह सकते, जिस परिवार के साथ सदैव नहीं रह सकते, जिस समाज के साथ सदैव नहीं रह सकते, उस समाज को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए। अगर इसमें कोई चकराई है क्या? अगर हम कहें कि आप शरीर की सेवा कीजिए तो आप कह सकते हैं हमारे पास शक्ति नहीं है, योग्यता नहीं है, कह सकते हैं कि नहीं? लेकिन अगर हम ये कहें हमको कोई हानि मत पहुंचाइए तो इसको आपको कौन सी योग्यता चाहिए भैया है? तो मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। ये जो जीवन का सत्य है, जो हम जानते हैं कि हमें कोई हानि न पहुंचाए। देखिए एक बार एक बड़े विद्वान महापुरुष से मुझसे भेंट हुई और फिर मुझसे पूछने लगे कि बताओ शान, अज्ञान किसे कहते हैं? अब मैं कहा बेपर आदमी, तो मैंने कहा आप ही बताइए, ये मैं साधक आदमी की बात नहीं कहता हूं। मैं तो मान लेता भाई मैं बेपढ़ा हूं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा जानते होंगे। तो कहने लगे अज्ञान इसी को कहते हैं जो लोग ये मान लेते हैं कि भगवान व्यास में ज्यादा ज्ञान था, हम में कम ज्ञान है। सुमन भाई बड़ी गंभीर बात, ये बड़े विद्वान महापुरुष ने कहा, जो वेदांत के अद्वितीय पंडित थे अच्युत महाराज जी के नाम से कहा, जिसने अच्युत ने कहा मैं चौंका पहले तो, फिर मैंने सोचा ये बात तो ठीक मार्ग होती है। तो ज्ञान योग्यता का नाम नहीं है, किसी योग्यता और चीज है, ज्ञान और चीज है। योग्यता एक प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार की शक्ति है, ज्ञान एक प्रकार का प्रकाश है। कौन सा ज्ञान? किस ज्ञान से आप ये अनुभव करते हैं कि कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी व्यक्ति कभी भी मुझको हानि न पहुंचाए? ये आपकी सीखी हुई बात है कि आपकी जानी हुई बात है? बोलो, ये आपकी जानी हुई बात है कि सीखी हुई बात है? जानी हुई बात है ना। अच्छा, आप किसी बड़े भारी विद्वान से पूछो धर्म क्या है तो कहेगा अहिंसा परमो धर्म, यही नहीं कहेगा? यानी किसी को तकलीफ मत दो, किसी को हानि मत पहुंचाओ, किसी के विकास में रुकावट मत डालो, किसी की अवनति मत करो, किसी को न कहेगा? तो जो बात एक बहुत बड़े विद्वान ने कही वही बात आपके ज्ञान में है या नहीं, बोलो। अच्छा, अब तो आप सोचिए कि आपका ज्ञान और वेदों का ज्ञान, आपका ज्ञान और भगवत वाणी का ज्ञान, आपका ज्ञान और संतों का ज्ञान, ज्ञान में हम सब एक हैं कि अलग अलग हैं? जी एक है, लेकिन अलग कहां होते हैं आप जानते हो? अब इसी ज्ञान का किसी ने कर लिया आदर, तय कर लिया, निर्णय कर लिया, मैं किसी को कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा, तो वो ज्ञान उसके काम आ गया कि नहीं? बोलो, वो अहिंसक हो गया कि नहीं? वो सर्वप्रिय हो गया कि नहीं? वो सर्वहितकारी हो गया कि नहीं? वो सबके लिए आनंददायक हो गया कि नहीं? क्या रहा है? तो अंतर कहां है? अंतर हमारे आपके ज्ञान में नहीं है, अंतर है इस बात में। एक आदमी ज्ञान तो है पर उसका आदर नहीं करता, और एक आदमी ज्ञान का आदर करता है। यानी ज्ञान को, ज्ञान से जो सत्य है, जो सत्य ज्ञान से प्रतीत होता है, अनुभव होता है, उस सत्य को स्वीकार करता है। तो स्वीकार करने में न करने में अंतर है कि ज्ञान में अंतर है? ज्ञान में अंतर नहीं है ना। अगर ये बात आपको मालूम हो जाए तो ज्ञान के लिए आपको हमारे पास आने की जरूरत पड़ेगी क्या? ज्ञान के लिए आप योग्य, देखिए फिर एक बात ना भूल जाइएगा, ज्ञान के लिए कह रहा हूँ, योग्यता के लिए नहीं कह रहा हूँ। योग्यता के लिए तो अगर आपको खाना पकाना है तो किसी बेपरी लड़की से सीखनी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा सीखना? तो योग्यता तो वो कहते हैं जिससे आवश्यक कार्य को पूरा किया जाए, और ज्ञान उसे कहते हैं जिससे वास्तविकता का अनुभव किया जाए। तो वास्तविकता के अनुभव करने वाला ज्ञान हम सब में समान रूप से है या नहीं है ना? अच्छा एक बात ना भाई, इस बात के मान लेने से अथवा जान लेने से आपकी जीवन की किसी समस्या का हल हुआ या नहीं? बोलो, क्या क्या कहते हो? अब देखिए चतुराई ना करो, जानते हैं
ये गीता और चीज है, ज्ञान और चीज है। तो सत्संग ज्ञान से होता है, योग्यता से नहीं होता। आज हमसे गलती क्या होती है, देखिए हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, पांच पांच छह छह वर्ष की बच्चियां देखी है जिनको पूरा गीता याद है, लेकिन गीता का प्रभाव है उनके जीवन में, बोले क्या नहीं है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि जो मानव सेवा संघ का जो सत्संग है उसमें सिखाया नहीं जाता, कोई नई बात नहीं बताई जाती, आपके जीवन का सत्य आपके सामने रख दिया जाता है। क्योंकि सत्य को अगर आप स्वीकार नहीं करोगे तो मैं आपसे पूछता हूँ, मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, कि सत्य को बिना माने आप धर्मात्मा हो सकते हैं क्या? बोलो, खूब धर्म ग्रंथों का पाठ करो, खूब माला घेरो, खूब ध्यान करो, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको ठीक मान रहा हूँ, लेकिन मैं पूछता हूँ कि अगर सत्य का आदर न करें तो आप धर्मात्मा हो सकते हैं? अच्छा, जब तक धर्मात्मा नहीं हो सकते तब तक जगत के काम आते हैं क्या? बोलो क्या राय है, कोई धर्मात्मा जब तक न हो तब तक वो संसार के काम आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना, ये बात ठीक है कि नहीं? तो धर्म माने संसार के काम आओ, और संसार के काम कैसे आओगे, जब इस सत्य को स्वीकार करो कि मैं कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, न मन से, न वाणी से, न कर्म से कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। ये सबसे पहली बात है कि नहीं, ये सबसे अधिक आवश्यक है कि नहीं? देखो, किसी उनसे पूछो कि तुमको धर्मात्मा पत्नी चाहिए कि धर्मरहित पत्नी चाहिए, क्या कहेगी? जी धर्मात्मा चाहिए। अच्छा, धर्मात्मा कब होगी जो हानि में पहुंचाए? देखिए देखिए, एक और विचार करके देखो, भाई कोई बुरा मत मानना, मैं देख रहा आदमी हूँ, आप लोग पढ़े लिखे हैं, और ये बम्बई शहर है, आप लोग इतने पढ़ेंगे जो 20 रोज पढ़ाएंगे। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, लोग कहते हैं कि हमको धर्मात्मा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहिए, धर्म शब्द से लोग डरते हैं, तो धर्म से डरते हैं कि मजहब से? बोलो है, एक नहीं है, जरा गंभीर बात करो। धर्म तो मुझे कहते हैं, जब अभी बताओ जो कहता हूँ, एक जो विधियात्मक प्रवृत्तियां हैं, विधियात्मक जो प्रवृत्तियां हैं वे मत संप्रदाय मजहब कहलाती हैं, और जो निषेधात्मक सत्य है वो धर्म कहलाता है। जैसे मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, ये तो धर्म हो गया। अब मैं किस किस प्रकार से दूसरों को लाभ पहुंचाऊंगा, ये मजहब हो गया। तो मजहब धर्म के बिना निर्जीव होगा या सजीव होगा? जैसे विचार करो, देखो धर्म ने कहा, इस्लाम मजहब आपने सुना है ना, इस्लाम का, हिंदू का हिंदुइज्म, इस्लामिज्म, ईसाइयत सुनिए ना। अब आप देखो इन इन, इन मजहब का धर्म का रेट बताता हूं, यानी धर्म सब में एक। अच्छा बताओ, किसी मुसलमान भाई से पूछो कि तुम्हें कोई हानि पहुंचाया तो कैसा लगेगा, क्या कहेगा वो? अच्छा ईसाई से पूछो तो, अच्छा ईश्वरवादी से, हिंदू से पूछो तो जी? तो जिसमें सबका एक मत हो वो धर्म कहलाता है, और जिसमें भेद हो वो मजहब कहलाता है।